ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम अपने परंपरा में जो महान आचार्य आए हैं, खासकर आज श्रील माधवेंद्रपुरी और श्रील श्रीनिवास आचार्य, इनका आविर्भाव दिवस है और श्री श्री राधा रमन देव जी का भी आविर्भाव है और श्रील परमेश्वरी दास ठाकुर, इनका तिरोभाव दिवस है। तो इन महान भक्तों के जीवन के बारे में और उनकी जीवन से हमें जो सुंदर सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होती है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारा प्रयास उस चिड़िया की तरह होता है जो अपनी शक्ति से आसमान में एक हद तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो उसी प्रकार हमारा जो प्रयास होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जितनी ये महान भक्त उनका गुणगान किया जाना चाहिए उतना हम कभी नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन, कहते हैं कि एक व्यक्ति को उस स्तर पे होना चाहिए तभी वो उस स्तर के भक्त को या व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक सेवा के रूप से यहाँ पे हमें बैठने का और कुछ कहने का मौका दिया जा रहा है। तो हम आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम कुछ इन महान भक्तों का गुणगान कर सकें। श्रील माधवेंद्रपुरी, ऐसे बताया जाता है कि ये भक्ति के वृक्ष के जड़ है, रूट ऑफ द डिवोशनल ट्री। जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस भक्ति वृक्ष के स्टेम को क्या कहते हैं, शाखा तो ब्रांच हो गया, तन, जो पेड़ का तन है, तना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। और बहुत सारे ब्रांचेस भी श्री चैतन्य महाप्रभु से आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गार्डनर भी है, माली भी है इस पेड़ के। इस पेड़ को चैतन्य महाप्रभु ही बोते हैं और इस पेड़ के रूप में चैतन्य महाप्रभु स्वयं तने बन जाते हैं ताकि वो अलग अलग शाखाओं को प्रस्तुत कर सके। तो श्रील माधवेंद्रपुरी ये जड़ माने जाते हैं इस भक्ति वृक्ष के। जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस वृक्ष के जो सुंदर सुंदर फल है वो बांटने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस सुंदर उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये माली बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इतने सारे फल इस वृक्ष को आए हैं और उस मालिक को अपने स्वयं की शक्ति कम प्रतीत हो रही है। उनको लग रहा है कि मैं अकेला इन सारे अनगिनत फलों को कैसे बांट सकता हूं, तो मुझे मदद की जरूरत है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और खासकर श्रील माधवेंद्रपुरी, इनके आने के पूर्व इस धरती पर श्री राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में किसे भी पता नहीं था। सर्वसाधारणता नारायण की भक्ति की जाती थी, क्योंकि सारे वैदिक ग्रंथों में हम देखेंगे तो विष्णु या नारायण का नाम आता है, उनकी भक्ति के बारे में बताया जाता है। लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति ये किसी को पता नहीं है। लेकिन श्रील माधवेंद्र पुरी जो माधवाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, इन्होंने जो ब्रज भक्ति होती है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति जो होती है, और खासकर भगवान कृष्ण के प्रेम में जो विरह का भाव है, ये भाव प्रकट किया है श्रील माधवेंद्र पुरी ने। ये पहले आचार्य है जिनसे ये कृष्ण प्रेम की जो संप्रदाय है या कृष्ण प्रेम की भक्ति की जो परंपरा है वो आगे शुरू होती है। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रील माधवेंद्र पुरी पाद को बहुत विशेष रूप से ये स्थान दिया है, क्योंकि माधवाचार्य की संप्रदाय में पहले भगवान कृष्ण को अकेले भक्ति की जाती थी, पूजा की जाती थी, और वो भी बहुत रिचुअलिस्टिक होती थी, मतलब बहुत रीति रिवाज हुआ करते थे उसमें। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मग्न हो जाता था रीति रिवाजों को पार करने के लिए, क्योंकि माधवाचार्य संप्रदाय में हम देखते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के विधियां होती हैं, अर्चना पद्धति होती है, तो बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रकार के पूजा अर्चना होती है, तो व्यक्ति उसी में इतना मग्न हो जाता है। तो प्रेम जो है कृष्ण प्रेम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सबसे पहले शिक्षा यही प्रदान की है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो जो प्रेम की भावना होती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति खासकर, इसकी शुरुआत श्रील माधवेंद्र पुरी ने की है। तो इसलिए श्रील माधवेंद्र पुरी पाद ये बहुत विशेष स्थान रखते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन के, जब वो इस धरती पर लीला कर रहे थे, तब उन्होंने खुद स्वयं दिखाया कि वो कैसे माधवेंद्र पुरी से प्रेम करते थे और उनका आदर करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षदों में से ऐसे बहुत भक्त है जो श्रील माधवेंद्र पुरी पाद से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, जैसे परमानंद पुरी, ईश्वरपुरी तो है ही, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिनसे दीक्षा ग्रहण की, अद्वैत आचार्य श्रील नित्यानंद प्रभु, ये सारे माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। तो माधवेंद्र पुरी ही एक बहुत ही विशेष प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले रहे थे, तब वो एक विशेष, ऑफकोर्स वो तो एक अलग श्लोक है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था संन्यास के समय, वो भाव श्रील माधवेंद्र पुरी पाद बहुत अच्छी तरह दिखा रहे थे अपने जीवन में। खासकर जब माधवेंद्र पुरी पाद का तिरोभाव होने वाला था, वो जब अपना दिव्य शरीर छोड़ने वाले थे, तो उस समय वो हमेशा एक श्लोक याद किया करते थे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदाव लोक्य से हृदयम त्वद आलोक कातरम दयित भ्रम्यति किम करोमि अहम। इसमें ये बेसिकली ये जो श्लोक है ये श्रीमती राधा रानी बोलती है, कब, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो राधा रानी को बहुत विरह की भावना होती है कि कहाँ है मेरे कृष्ण, अब तक मैं उन्हें देख रही थी, अब मैं देख नहीं पा रही हूं उनको। तो भगवान कृष्ण से बहुत विरह महसूस हो रहा था श्रीमती राधा रानी को, और यही श्लोक श्रील माधवेंद्र पुरी पाद उच्चारण करते हैं जब उनके तिरोभाव की समय आ जाता है, जब वो छोड़ने वाले होते हैं। अई दीन दयाद्र नाथ है, हे पतित जीवों के नाथ, मथुरा नाथ, और ये मथुरा के नाथ, कदाव लोक्य से, मुझे बहुत आतुरता हो रही है, कहाँ है आप, मैं कहाँ आपको देख सकता हूं। हृदयम त्वद आलोक कातरम, मेरा हृदय बहुत कांप रहा है, आतुरता आ रही है मेरे हृदय में आपको एक बार फिर से देखने की। दयित भ्रम्यति किम करोमि अहम, मैं क्या करूं अब, मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, ऐसे श्रीमती राधा रानी कहती है। और यही श्लोक श्रील माधवेंद्र पुरी पाद अपने अंतिम समय पे कहते हैं। तो ये जो भाव है विरह का भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव, ये श्रील माधवेंद्र पुरी पाद ने सबसे प्रथम इस माधवाचार्य संप्रदाय में शुरू किया है, लाया है, और फिर इसकी वृद्धि श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा, खासकर अंत लीला जब कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा महाभाव में हुआ करते थे, और उस समय वो श्रीमती राधा रानी का जो विरह है भगवान कृष्ण के प्रति, वो विरह प्रकट कर रहे थे। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी पाद को बहुत विशेष स्थान देते हैं और बहुत विशेष रूप से उनका गुणगान करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मौका मिलता है, एक बार जब वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो जाते समय बीच में जगन्नाथपुरी के पहले एक स्थान आता है रेमुना, जहाँ पे क्षीरचोर गोपीनाथ की सुंदर विग्रह है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आनंद लेते हैं श्रील माधवेंद्रपुरी की कहानी सुनने के लिए और कहने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत उत्कंठा होती है, और खासकर जब हमने अक्षय तृतीया का दिन सेलिब्रेट किया था, तो उस समय हमने चंदन यात्रा के बारे में सुना था, और चंदन यात्रा और श्रील माधवेंद्रपुरी पाद, इनका बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि उन्हीं की वजह से चंदन यात्रा शुरू हुई है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी इसीलिए बहुत विशेष है, और श्रील माधवेंद्रपुरी को श्री गोपाल जी भी स्वयं प्रकट हुए थे। गोपाल जी राह देख रहे थे श्रील माधवेंद्रपुरी पाद का, कि वो कब वृंदावन आएंगे और कब मुझे इन झाड़ियों में जो रखा गया है, मुझे सालों साल से वहां से निकालकर फिर से मेरी स्थापना करेंगे। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनके शुद्ध भक्तों से उनकी सेवा होती है, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति होने के नाते जब उनसे कोई प्रेम करता है, तो भगवान को भी बहुत स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेम हो जाता है, और उनसे सेवाएं लेना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, कोई ऐसी विशेष गहरी बात जैसे नहीं है, ये सिंपल जो रिलेशनशिप संबंधों का जो शास्त्र है, उसकी सबसे सिंपल सबसे आसान बात है। हम किनसे संबंध रखना चाहते हैं, उन्हीं से संबंध रखना चाहते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उनके साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि कोई भक्त उनसे बहुत अच्छी तरह प्रेम करते हैं, तो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं और उनसे सेवा लेना चाहते हैं। तो ये भगवान की बड़ी विशेषता है कि वो अपने भक्तों को चुनते हैं उन सेवाओं के लिए। इसीलिए हमें इन महान भक्तों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इन महान भक्तों के चरित्र से हम सुंदर सुंदर ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे पॉइंट्स हमें मिलते हैं, बातें हमें समझ में आती है कि कैसे हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के प्रिय भक्त नहीं बनेंगे, तब तक भगवान हमें अपने पास नहीं लाएंगे, वो थोड़ा दूर ही रखेंगे, ठीक है तुम वहीं पे अच्छे हो। लेकिन प्रिय भक्त यदि हमें बनना है भगवान का, तो उसके लिए हमें पेमेंट देने की जरूरत है, उसके लिए हमें कर देने की जरूरत है, और वो कर है हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के दिए हुए मार्ग पर अटूटता से या अटलता से चलने की दृढ़ता, ये हमारे पास होनी चाहिए। जब हम प्रामाणिकता से भगवान के दिए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, हमें पास लेते हैं, अरे ये देखो ये कितना अच्छा भक्त है, मैंने जो कहा है उस अनुसार जीवन जी रहा है, तो चलो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। तो इन इन बातों से हम भगवान के महान भक्त बन सकते हैं, और फिर भगवान हमें भी अपनी लीलाओं में स्थान देंगे। सबके सबका कोई ना कोई स्थान होता है, क्योंकि हम शाश्वत भगवान के अंश हैं, पार्षद हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें शाश्वत सेवा है भगवान के लिए। अभी हमें पता नहीं है हमारी कौन सी सेवा है, तो इसीलिए जो परंपरा में हमें मार्गदर्शन आता है, उस मार्गदर्शन को हम बहुत गंभीरता से पकड़ते हैं और उस अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो जरूर एक दिन हमें हमारी जो शाश्वत सेवा है वो बताई दी जाएगी। भगवान उसको रिवील करेंगे, हमारे सामने प्रकट कर देंगे, और उस अनुसार हम नित्य पार्षद बन सकते हैं भगवान के फिर से। तो श्रील माधवेंद्रपुरी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट करने चाहते थे गोपियों का भाव, विरह का भाव, कृष्ण प्रेम का भाव, उसको प्रकट करने के लिए आते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद तने बनते हैं उस वृक्ष के, और उसमें से दो प्रमुख शाखाएं निकलती हैं, एक है श्री अद्वैत प्रभु और दूसरे है श्री नित्यानंद प्रभु, और इन दो शाखाओं से और बहुत सारी शाखाएं निकलती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन भी एक शाखा है इस वृक्ष की, एक ब्रांच है इस्कॉन संस्था। तो इस संस्था से या इस शाखा से जो चैतन्य महाप्रभु से निकली हुई है श्रील माधवेंद्रपुरी जिनके जड़ है, इस शाखा से हम जुड़े रहेंगे, इस संस्था में या इस आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में हमें जो शिक्षाएं दी गई है उस अनुसार हम जीवन जिएंगे, जरूर हमें इस वृक्ष में जो सुंदर सुंदर फल आते हैं, कृष्ण प्रेम के फल, ये जरूर हमें फल प्राप्त होंगे जिसका हम आस्वादन कर सकते हैं। तो उन्हीं शाखाओं में से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अलग अलग भक्तों को चुनते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु छह गोस्वामियों को चुनते हैं बहुत विशेष रूप से, और उनके माध्यम से भक्ति शास्त्र का अवलोकन करते हैं, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु खासकर श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को विशेष रूप से ये आज्ञा देते हैं कि आप सारे शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और इन सारे शास्त्रों के आधार पर कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है, उसको आप स्थापित कीजिए, और भक्ति के जो अलग अलग विधि विधान हैं उनके बारे में आप रचना कीजिए। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन सारी शास्त्रों को पढ़कर बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों का रचना करते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु और कुछ अपने निकट के पार्षदों को चुनते हैं इन भक्ति शास्त्रों का वितरण और प्रचार करने के लिए। तो उनमें से एक है श्रीनिवास आचार्य, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। श्रीनिवास आचार्य एक छकंडी ग्राम में रहते थे, उनके पिताजी और अपनी उनकी मां के साथ छिकंडी ग्राम में, जो गंगा जी के पास है, वहां पे रहते थे बंगाल में, गौड़ देश में। और इनकी बहुत सुंदर, क्योंकि इनका आविर्भाव है तो इनके जन्म के बारे में हम कुछ देखेंगे, बहुत विशेष चीजें होती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी नवद्वीप लीलाएं खत्म कर जब सन्यास लेने जाते हैं, तो सारे भक्त बहुत दुखी हो जाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ नवद्वीप में सुंदर लीलाएं कर रहे थे, अब वो हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि सन्यासी फिर से वापिस नहीं आते अपनी जगह पर, वो भ्रमण करते हैं प्रचार करने के लिए। तो उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले रहे होते हैं, तब श्रीनिवास आचार्य के जो पिताजी हैं, जिनका नाम बाद में चैतन्य दास बन जाता है, उनको ये खबर मिलती है, तो वो जाते हैं वहां पर। और उस समय जब सन्यास लेने के लिए वो जो बार्बर थे श्री मधु जिनका नाम था, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल कट कर रहे थे, तो उनसे कट नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका हाथ ही नहीं चल रहा था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर है और उनके बाल इतने सुंदर है, कोमल है, उनका हृदय मान ही नहीं रहा था उन बालों को काटने के लिए। लेकिन बहुत कष्ट के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे जाते हैं वहां पर। और जब चैतन्य महाप्रभु उस शेव्ड हेड में आते हैं, तो सारे भक्त उनका वो दिव्य रूप देखकर बेहोश हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे। अफकोर्स सन्यासी के रूप में भी वो बहुत सुंदर है, हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये भक्तों का प्रेम है कि वो हमेशा भगवान को एक सुप्रीम एंजॉयर की तरह देखना चाहते हैं, एक परम भोक्ता के रूप में, क्योंकि वो भगवान की सुंदर सुंदर सेवाएं कर सकते हैं, लेकिन सन्यास होने के बाद भगवान की क्या सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सन्यासी हमेशा विरक्ति का जीवन जीते हैं, वो किसी भी प्रकार का इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा नहीं करते या उनको अपने जीवन में आप यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते। तो बहुत, और खासकर श्रीनिवास आचार्य के जो पिताजी होते हैं, उनको बहुत धक्का लग जाता है चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास का वस्त्र देखकर और उनके पहनावा देखकर बहुत दिल से रोने लगते हैं। उनको सहन नहीं होता कि अब चैतन्य महाप्रभु ऐसे दिखेंगे। तो उसी अर्ध अवस्था में, मैडनेस की अवस्था में, पागलपन में, वो अपने गांव शिखंडी वापिस जाते हैं, लेकिन उनके जीवा पर हमेशा ये श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे नाम चल रहा होता है। तो सारे शिखंडी के ग्रामवासी ब्राह्मण और सारे भक्त लोग उनका नाम बदलकर चैतन्य दास नाम रखते हैं, तब से वो चैतन्य दास नाम से जाने जाते हैं। तो चैतन्य दास, इनको बहुत इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद वो तो जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन उनकी माँ की आज्ञा से वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, वहां पे निवास करते हैं। तो चैतन्य दास और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया, ये दोनों नहीं लक्ष्मी प्रिया, ये दोनों जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं दोनों को देखकर, और उनको कहते हैं कि आप इतने कष्ट कर गौड़ देश से यहाँ जगन्नाथपुरी आए हैं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो जगन्नाथ देव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और जल्दी ही आपकी जो हृदय की इच्छा है उसको वो पूरा करेंगे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं और कहते हैं कि आप जाके जगन्नाथ जी का दर्शन लीजिए। तो दोनों चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया जाते हैं गोविंद के साथ श्री जगन्नाथ देव जी का दर्शन लेने के लिए, और उनका दर्शन लेकर वो वापिस आते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में दो तीन दिन वो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और फिर एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कहते हैं कि गोविंद, चैतन्य दास को जाके कहिए कि वो तुरंत गौड़ देश वापिस चले जाए, क्योंकि जल्दी ही श्री जगन्नाथ देव जी की कृपा से उनको एक संतान प्राप्त होने वाली है जिसका नाम होगा श्रीनिवास। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसका बालक का नाम भी दे देते हैं पहले ही, जन्म होना तो अभी समय है लेकिन पहले ही दे देते हैं नाम श्रीनिवास। और ये बहुत ही सुंदर बालक होंगे और भगवान के बहुत महान भक्त होंगे। इस प्रकार से गोविंद को बोलते हैं और गोविंद जाकर चैतन्य दास और लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी प्रिया को बताते हैं इसके बारे में। तो बहुत प्रसन्न होकर वो जाते हैं वापिस गौड़ देश, और थोड़े ही समय बाद लक्ष्मी प्रिया के वो गर्भ धारण करती है, और थोड़े समय बाद आज के दिन जो वैशाख का महीना है और पूर्णिमा जो है इसमें रोहिणी नक्षत्र के समय श्री श्रीनिवास आचार्य जो आगे जाकर बनते हैं उनका जन्म होता है। श्री श्रीनिवास आचार्य की जय। और जन्म से ही वो इतने प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद उनके जो मैटरनल मतलब लक्ष्मी प्रिया के जो पिताजी हैं वो आते हैं बलराम विप्र, वो बड़े बहुत बड़े ज्योतिष होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बालक जो है वो साधारण नहीं है, इसमें सभी महापुरुष के लक्षण हैं। देखते हैं कि उनकी नाक बहुत लंबी है, उनकी जो आंखें हैं वो कानों तक पहुंची है, उनके जो हाथ है उनके घुटनों तक पहुंचे हुए हैं, ये सारे महापुरुष के लक्षण हैं। तो श्रीनिवास आचार्य बचपन से ही एक महापुरुष के लक्षण दिखाते हैं, और उनके पिताजी चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया बचपन से ही श्रीनिवास के हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम और उनके नाम के प्रति रुचि और उनकी लीलाओं के प्रति आसक्ति डाल देते हैं। तो बचपन से ही उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना हुआ होता है। और महान महान भक्त जैसे नरहरि सरकार है, गोविंद घोष है, इन सारे महान भक्तों के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं श्रीनिवास आचार्य को, और शिला विद्यावचस्पति इनसे उनको शिक्षाएं प्राप्त होती है, और इतने होशियार होते हैं कि थोड़े समय में ही सब कुछ सीख जाते हैं। और क्योंकि हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे तो इसलिए उनके अंदर बहुत उत्कंठता थी कि मैं कब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन कर सकता हूं। तो एक बार जब वो श्रीखंड गए थे शिल नरहरि सरकार और रघुनंदन ठाकुर से मिलने के लिए, तब उनको वो अपनी इच्छा प्रकट करते कि मुझे श्री चैतन्य देव के चरणों के दर्शन करने हैं। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि थोड़े ही समय, कुछ दिनों रुक जाओ, थोड़े समय में सारे गौड़ देश से बंगाल से अलग अलग भक्त जगन्नाथपुरी जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, तो आप उनके साथ जाइए। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्रीनिवास जाते हैं, अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, आप मुझे कृपया आशीर्वाद दीजिए। तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए सारे भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब जगन्नाथपुरी के पास पहुंचते हैं तब उनको ये खबर मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं को खत्म कर दिया है, वो इस धरती से फिर से वापस चले गए हैं भगवत धाम। और जब वो सुनते हैं तो मानो उनके हृदय पे एक बहुत बड़ा वज्र गिर पड़ा, ऐसे उनको अनुभव होता है, वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहता था, उनके चरणों का दर्शन करना चाहता था, लेकिन कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे उनके दर्शन नहीं मिल रहे। सारे भक्त बहुत प्रयास करते हैं उनको समझाने का और किसी प्रकार उनको ले चलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। अब जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो वहां अलग अलग भक्तों को मिलते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन होते हैं उनको, फिर गदाधर पंडित के दर्शन होते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, वक्रेश्वर पंडित, ऐसे महान महान परमानंद पुरी, ऐसे महान भक्तों के दर्शन लेते हैं, उनके आशीर्वाद उनको प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी ने श्रीनिवास के बारे में सुना था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका नामकरण संस्कार करते हैं। तो सारे भक्तों को पता था कि श्रीनिवास ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को धारण करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य को चुना है इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सबको ये बात पता थी, तो इसीलिए जब भी श्रीनिवास आचार्य से कोई भक्त मिलते थे तो उनको बहुत प्रसन्नता होती थी और अपने सारे आशीर्वाद श्रीनिवास को देते थे। तो सारे भक्तों को मिलने के बाद श्रीनिवास फिर से वापस बंगाल की ओर, गौड़ देश की ओर जाते हैं और जाकर सबसे प्रथम वो नवद्वीप जाते हैं वहां पर भक्तों को मिलने के लिए। और वहां पर जाकर वो मिलते हैं उनका नाम भूल गया मैं, जो सची माता के साथ रह रहे थे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को मिलते हैं और वो सची माता के पास ले जाते हैं और सची माता के दर्शन लेते हैं। और उनकी इच्छा थी विष्णु प्रिया के दर्शन लेने की, लेकिन विष्णु प्रिया किसी को अपने दर्शन नहीं दे रही थी। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विष्णु प्रिया जी का उनको दर्शन होता है और विष्णु प्रिया उनको आशीर्वाद देती है। और भी जगह जाते हैं, शांतिपुर जाते हैं, अद्वैताचार्य के घर पे जाते हैं और सीता ठाकुरानी जी से मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। श्रीनिवास आचार्य के जीवन से ये बहुत बार हम मतलब बहुत प्रमुखता से ये बात सामने आती है कि श्रीनिवास आचार्य हमेशा महान भक्तों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शांतिपुर जाकर फिर जाते हैं करदाहा, करदाहा जाते हैं तो वहां पे श्री नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां होती है, वसुधा और जानवा, उनको मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं पे सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आज्ञा श्रीनिवास आचार्य को मिलती है। सीधा जानवा देवी अपने स्वयं के चरण उनके सर के ऊपर रखती हुई उनको आज्ञा देती है। वो कहती है आप यहां से श्री वृंदावन धाम जाओ, वहां पर जाकर शिलजीव गोस्वामी के पास जाकर आप सारे गोस्वामियों के जो लिटरेचर्स है, शास्त्र है, उनका अध्ययन करके उसका प्रचार करो। ऐसी आज्ञा श्री जानवा देवी बताती है श्रीनिवास को। और उस आज्ञा को सर पे धारण कर श्रीनिवास आचार्य वो जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन जाते जाते बीच में गया और काशी भी जाकर जाते हैं। तो जब वृंदावन में आते हैं सबसे पहले मथुरा में आते हैं, मथुरा में विश्राम घाट पे वो स्नान करते हैं और वहां पे विश्राम करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी वहां पे विश्राम किया था। जब वो कंस को मारते हैं उसके बाद विश्राम घाट पे आकर भगवान कृष्ण विश्राम लेते हैं। तो वहां पर विश्राम लेने के बाद वो जाते हैं वृंदावन में। अब जब वृंदावन जा रहे होते हैं तभी उनको पता चलता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी अपने लीलाओं का अंत कर चुके हैं। तो इस श्रीनिवास आचार्य के साथ बहुत होता है, अनेक अनेक भक्तों के बारे में उनको खबर मिलती रहती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं रहे, फिर नित्यानंद प्रभु नहीं रहे, फिर अद्वैत प्रभु नहीं रहे, फिर यहाँ पर वृंदावन में आकर देखते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं रहे। तो अलग अलग महान भक्तों के विरह श्रीनिवास आचार्य अपने जीवन से दिखाते हैं। हालांकि इन भक्तों को ज्यादा मिले नहीं है, उनका संग इतना नहीं हुआ है, लेकिन उनके प्रति श्रीनिवास के हृदय में बहुत दृढ़ श्रद्धा है, आदर है और प्रेम है। ये विशेषता है परंपरा की। हम परंपरा में देखते हैं कि हालांकि भक्त सीधे सीधे जुड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो पहले के आचार्य है उनके प्रति बहुत श्रद्धा और आदर और प्रेम की भावना होती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है एक भक्त के हृदय में इस प्रकार के भाव आना, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को इन सबसे जुड़े हुए देखते हैं। वो कभी भी अपने आप को अलग करके नहीं देखते इन महान भक्तों से, क्योंकि अलग करके देखेंगे तो हम एलियन या आइलैंड की तरह बन जाएंगे, एक बेट की तरह बन जाएंगे जो समुद्र में किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो बहुत खतरनाक जगह है। कभी भी समुद्र उसके ऊपर आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। तो ये महान आचार्य हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इन महान भक्तों से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए और हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और उनकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ये श्रीनिवास आचार्य दिखाते हैं कि इन महान भक्तों को कभी कभी मिले हैं, हार्डली कभी, कि कई भक्तों का उन्हें दर्शन भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनके बारे में जब सुनते हैं तो उनके हृदय में बहुत प्रेम उमड़ आता है उन महान भक्तों के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य मिलते हैं शिलजीव गोस्वामी को और उनकी कृपा से वो और भी दो महान भक्तों को मिलते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील श्यामानंद प्रभु। ये तीनों श्री जीव गोस्वामी के अंडर रहकर श्री सारे गोस्वामियों के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और इन सबका अध्ययन होने के बाद जब खासकर जीव गोस्वामी देखते हैं श्रीनिवास आचार्य सारे शास्त्रों में इतने पारंगत हो चुके हैं, इसीलिए श्रीनिवास को आचार्य टाइटल देते हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद और उसी समय से श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य बनते हैं। पहले उनका सिर्फ श्रीनिवास नाम था लेकिन श्रील जीव गोस्वामी आचार्य टाइटल देते हैं क्योंकि उन्होंने सारे गोस्वामियों के शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया था और अच्छी तरह वो समझ गए थे उन शास्त्रों को। और श्रील जीव गोस्वामी फिर वो फेमस इंस्ट्रक्शन जो मिली थी उसको दोहराते हैं, कहते हैं कि ये सारे शास्त्रों को आप गौड़ देश ले जाइए और वहां पर जाकर इसका वितरण कीजिए और प्रचार कीजिए। और श्रील जीव गोस्वामी के आशीर्वाद और आज्ञा लेकर श्रील श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य तीनों जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जब जा रहे होते हैं गौड़ देश तो बीच में वान विष्णुपुर आता है तो वहां पे कुछ समय रुकते हैं रात को आराम करने के लिए, लेकिन उस जगह के जो राजा थे बीरमबीर किंग वो बड़े डकैत थे तो उनको, उनके पास जो लोग थे उन्होंने उनको बताया था कि कुछ लोग अभी जो जा रहे यात्री उनके पास बहुत कीमती संपत्ति है तो उस संपत्ति को आप जरूर चुरा लीजिए। तो अपने लोगों को भेजकर जब सारे भक्त लोग रात को रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय उनकी जो बैलगाड़ी है उसमें जो ट्रंक में रखे हुए सारे शास्त्र जो थे उस ट्रंक को ही वो उठा के ले जाते हैं और जब सुबह भक्त लोग उठते हैं तो देखते हैं कि वो ट्रंक ही गायब है वहां पर, तो बहुत दुख होने लगता है और वो कोसने लगते हैं कि सारे गोस्वामियों के लिखे हुए शास्त्र, एक एक ही कॉपी थी उसकी, ऐसे नहीं कि बहुत सारी कॉपी थे, एक एक ही कॉपी थी, वो सारी हमसे कहीं गायब हो गई है, हमसे मिसहैंडल हो गई है, तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य वो कहते हैं क्योंकि हम यहाँ वृंदावन से जब आ रहे थे तो हमने श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा गोविंद जी, इन तीनों के आशीर्वाद प्राप्त करके हम यहाँ पर आए हैं तो जरूर श्रील गोविंद देव जी की कोई विशेष योजना होगी जिसके वजह से ये शास्त्र हमारे हाथ से अभी चले गए हैं। तो श्रील श्रीनिवास आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को कहते हैं कि आप आगे चले जाइए और मैं इन शास्त्रों को फिर से वापिस प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। और श्रीनिवास आचार्य वहीं पे वान विष्णुपुर में रुकते हैं और वहां के भक्तों के माध्यम से उनको पता चलता है कि बीरमबीर ये भागवत कथा से हैं, तो ये मौका मिलता है श्रीनिवास आचार्य को, वो कहते हैं कि मैं जाके राजा को भागवत कथा सुनाऊंगा। अब जब वो संपत्ति मिल जाती है बीरमबीर को तो वो रात को जाकर वो पेटी खोलते हैं और उसमें देखते हैं कौन सी संपत्ति, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे हीरे सोना बहुत कुछ होगा, लेकिन देखते हैं तो उसमें किताबें होती है, उसमें से एक किताब वो उठाते हैं और पहला पन्ना उसका ऊपर करते हैं तो उस पे लिखा हुआ होता है रूप गोस्वामी, और श्रील रूप गोस्वामी के स्वयं के हाथों से लिखा हुआ होता है वो, और इतना सुंदर होता है, इतना जैसे मोती होते हैं ना सुंदर, उस प्रकार सुंदर उनके हस्ताक्षर लिखे हुई लिखावट है। अब जब वो लिखावट को देखते हैं बीरम्बीर, तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसी समय उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। सिर्फ वो लिखावट पढ़कर, उसमें लिखा होता है रूप गोस्वामी करके, बस उतना देखकर उनके हृदय में इतना परिवर्तन हो जाता है। और खासकर जब श्रीनिवास आचार्य आते हैं भागवत कथा करने के लिए, तो श्रीनिवास आचार्य के दर्शन मात्र से ही किंग बीरम्बीर का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जब कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। वो श्रीनिवास आचार्य के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनकी कृपा याचना करने लगते हैं, और श्रीनिवास आचार्य उनको स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में। और फिर उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे शास्त्र थे, किसी ने चोरी कर ली, आपको पता है क्या? तो बीरम्बीर कहते हैं हाँ हाँ, वो मेरे पास ही है, रखे हुए हैं। तो श्रीनिवास आचार्य को बहुत प्रसन्नता होती है इस बात को जानकर कि गोस्वामियों के शास्त्र है ऐसे कि ऐसे हैं। तो उन शास्त्रों को लेकर फिर वो जाते हैं गौड़ देश और बहुत सुंदर तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं इन महान भक्तों की, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है इन सारे भक्तों के बारे में चर्चा करने के लिए। और आज श्रील राधारमन जी का भी आविर्भाव है। जब श्रीनिवास आचार्य वृंदावन जाते हैं तो उस समय श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वो मिलते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास उस समय राधारमन देव थे। ऐसे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास राधारमन जी नहीं थे, पहले उनके पास 12 शालिग्राम शिलाएं थी। तो एक बार ऐसे होता है कि एक बहुत अमीर व्यक्ति आते हैं वृंदावन में, और बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र सारे गोस्वामियों को प्रदान करते हैं कि आप अपने विग्रहों की सेवा के लिए इसको स्वीकार कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी मिलते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई विग्रह थे नहीं। सनातन गोस्वामी के पास राधा मदन मोहन थे, रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद देव थे, लेकिन इनके पास तो शालिग्राम शिला थी। तो उनको बहुत दुख होता है और अंदर से उनकी इच्छा भी होती है कि मुझे श्री विग्रह की सेवा करनी है। तो वो सारे जो आभूषण होते हैं वो रखते हैं शालिग्राम शिला के आगे, क्या कर सकते हैं, वो तो पहना नहीं सकते शालिग्राम शिला को, तो गोल गोल होते हैं अपने रूप में, तो रखते हैं। लेकिन वो दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन होता है, और उस दिन वो प्रार्थना अर्पण करते हैं उन शालिग्राम शिलाओं को। वो कहते हैं कि आप प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, उनको प्रसन्नता देने के लिए एक खंभे से प्रकट हो सकते हो, तो जरूर इस शिला से भी आप प्रकट हो सकते हो, यदि आपकी कृपा हो तो आप इस शिला से प्रकट हो जाइए। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं और शिलाओं को रात को सुलाते हैं और फिर स्वयं कर शयन करते हैं। और जब सुबह उठकर जमुना में जाते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद एक बकेट पानी जमुना का जल लेके आते हैं शालिग्राम की सेवाएं करने के लिए। अब जब आते हैं, और क्योंकि हमेशा उनके पास एक झोला होता है, उस झोला में वो सारे 12 शिलाओं को रखते थे और गांठ मारकर ऐसे रखते थे उस झोला को। तो उस झोले को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक जो शिला है उसमें से दामोदर शिला वो एक सुंदर रूप में प्रकट हो जाती है, राधा रमन देव जी के रूप में। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी उस सुंदर छोटे से भगवान के शिव विग्रह को देखकर। इतनी प्रसन्नता होती है, सारे गोस्वामियों को वृंदावन में जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे दामोदर शिला से भगवान प्रकट हुए हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गोस्वामी आते हैं और वो जब देखते हैं कृष्ण भगवान के उस सुंदर विग्रह को तो बहुत प्रसन्नता होती है, और वो बहुत ध्यान से देखते हैं, कहते हैं तो ये तो बहुत ही विशेष विग्रह है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो ओरिजिनल स्वयं है वो अपनी अलग अलग अंगों की छवियों को इन गोस्वामियों के विग्रहों में प्रकट करते हैं। जैसे श्रील राधा मदन मोहन है, उनके जो चरण हैं वो भगवान कृष्ण से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, और जो राधा गोविंद देव है उनके हाथ, वक्षस्थल, उनकी कमर, ये बिल्कुल भगवान कृष्ण से मिलती जुलती है। और श्री राधा गोपीनाथ जी का जो सुंदर विग्रह का जो चेहरा है वो भगवान कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब जब गोस्वामी वो छोटे से कृष्ण के विग्रह को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें जो चरण है वो राधा मदन मोहन जैसे हैं, इनके जो हाथ और वक्षस्थल है ये राधा गोविंद देव जैसे हैं, और इनके जो चेहरा है वो राधा गोपीनाथ जैसे हैं। तो ये साक्षात भगवान कृष्ण अपने सारे अंगों को यहाँ प्रतिपादित कर रहे, दिखा रहे हैं। ये स्वयं रूप में भगवान स्वयं प्रकट किए अपने आप को इस सुंदर रूप में। और क्योंकि वो जो एरिया जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहते थे वो निधिवन का एरिया है, जहाँ पे भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं, तो इसीलिए गोस्वामी सब मिलकर उन छोटे विग्रहों का नामकरण संस्कार करते हैं और उनको नाम देते हैं राधा रमन देव। श्री राधा रमन देव की। तो इस प्रकार श्री राधा रमन देव आज ही के दिन सुबह प्रकट हुए हैं और हमें सुंदर दर्शन दे रहे हैं। तो हम श्री राधा रमन देव जी को प्रार्थना करते हैं और इन सारे महान वैष्णव आचार्यों को प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा करें कि हम भी श्रील प्रभुपाद जी की इन सुंदर शिक्षाओं को और श्रील सारे गोस्वामियों की और श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा रमन देव जी की, श्रील श्रीनिवास आचार्य की, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की, श्रील परमेश्वरी दास ठाकुर की, निताय गौर प्रेमनंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।